पृष्ठ संख्या 117, अध्याय 5, भारत में समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। हमारे देश में समाज कल्याण की एक लंबी परंपरा है। इसकी जड़ें हमारी समाज पद्धति और लोगों की धार्मिक और सर्वजनहितकारी भावनाओं में निहित हैं। कल्याण को व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ऋण मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति का उपकरण समझा जाता था। कल्याणवाद संपूर्ण समाजोत्थान का एक भाग प्रतीत होता था। दार्शनिकों के लेख, विचारकों और संतों की वाणियाँ रूढ़ियों, पद्धतियों और व्यवहारों का विशद विश्लेषण, ये सब देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं और इस वास्तविकता को प्रकट करते हैं। लोग अनेक संस्थानीय प्रबंधों के माध्यम से दुर्बलों और जरूरतमंदों का ख्याल रखा करते थे। सामयिक युग में विकास की प्रक्रिया और गति ने कल्याण के आयामों को प्रभावित किया। फलतः जो समाज एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक प्रक्रिया के रूप में चल रहा था, धीरे धीरे क्रम से वह अब एक औपचारिक पद्धति, आधिकारिक और स्वैच्छिक के रूप में बदल गया। हमारा प्रभुसत्ता संपन्न और प्रजातांत्रिक गणतंत्र अब लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने तथा उसे एक सर्व अभ्युदयवादी देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वतंत्रता के साथ सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमारे संविधान का एक अंग बन गया और यह न केवल हमारे प्रिंबल में ही निहित है, किंतु राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों तथा संविधान की अनेक धाराओं के अंतर्गत भी प्रकट होता है। राज्य से यह आशा की जाती है कि वह असमानताओं, न्यूनाधिकताओं, हानियों और अकल्याण की स्थितियों में रेगुलेशन, वितरण और अनुदान आदि के द्वारा सुधार लाए। समाज कल्याण की परिभाषा करते हुए यह कहा गया कि यह वे सेवाएं हैं जिन्हें समाज के कमजोर वर्गों के लिए निश्चित किया गया है, क्योंकि वे वर्ग किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या मानसिक कठिनाई के कारण इन सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं और परंपरा से उन्हें इन सेवाओं से वंचित रखा गया है। इस तरह समाज का क्षेत्र विस्तृत होकर स्त्रियों, बच्चों, युवकों, बूढ़ों, अशक्तों, विकलांगों, पिछड़े वर्गों, जातियों और कबीलों, सामुदायिक कल्याण सेवाओं, समाज प्रतिरक्षा, समाज कल्याण के तरीकों तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लिए समाज कल्याण सेवाओं तक फैल गया है। पृष्ठ संख्या 118। समाज कल्याण की प्रति पहुंच में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। परंपरा से समाज कल्याण का क्षेत्र रक्षात्मक और पुनर्वासात्मक सेवाओं से संबंधित रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक दुर्बल वर्गों के सुधार के आयामों को महत्व मिला है। अब कल्याण सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवार को विकास की एक इकाई माना गया है तथा उन विविध कार्यक्रमों में समेकित किया गया है जो व्यक्ति और वर्गों की योग्यताओं और क्षमताओं को अधिक बढ़ाने की ओर केंद्रित है। अब विकास की प्रक्रिया में ऐसी नीति अपनाई गई है जिससे गरीबी की मात्रा को घटाया जाए और आत्मविश्वास तथा स्वरोजगार के लिए अवसर देकर जीवन की गुणवत्ता में उभार लाया जाए। वर्तमान विकास नीति में मानव संसाधन विकास की दिशा में अधिक प्रयासरत रहकर उन वर्गों में सुधार लाना है जिसमें पिछड़ी जातियां, कबीले, अल्पसंख्यक तथा विकलांग व्यक्ति आदि आते हैं। समाज कल्याण के विषय में हमारी धारणा यह रही है कि अब तक समाज कल्याण नीति ने स्वैच्छिक क्षेत्र को कल्याण नीति, नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान की है। कल्याण कार्यों में शोध करने वालों तथा अधिकारी स्तर पर कार्यशील व्यक्तियों ने विभिन्न स्तरों पर कल्याण कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्शाई है। इसके अतिरिक्त एनजीओ को शक्ति प्रदान करने में बहुत से वैधानिक और वित्तीय तरीके अपनाए हैं। कल्याण सेवाओं के विकास में स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा देने से बहुत मदद मिली है। साथ ही समाज सेवाओं को दूसरी सेवाओं के साथ विकास का भी पूरक कहा गया है, जैसे स्वास्थ्य, पोषक आहार, शिक्षा, गृह निर्माण, श्रम कल्याण आदि। भारत एक संघीय देश है, अतः कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व तो केंद्रीय और राज्य सरकारों पर बराबर रहता है। पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण सेवाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसका अनुपात 13 से 20% तक है। प्रथम योजना में समाज सेवाओं के लिए 532 करोड़ रुपये निर्धारित थे, जो सातवीं योजना में बढ़कर 29,350 करोड़ हो गए। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि का 163% है। निर्धारित राशि में यह इतनी अधिक वृद्धि आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक विकास तथा आर्थिक उन्नति और विकास के साथ सामाजिक न्याय प्राप्त करने की सरकार की सकारात्मक प्रतिबद्धता को द्योतित करती है। समाज कल्याण के ऊपर निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे अपने क्षेत्रों में उचित संगठनात्मक और प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करें। साथ ही वे पिछले अनुभवों के प्रकाश में अपने संरचनाओं, पद्धतियों, प्रक्रियाओं में उचित परिवर्तन करें, जिससे वे अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सक्षमता और प्रभावशीलता से बढ़ सकें। हमारे संघीय ढांचे की त्रिकोणीय समाज कल्याण की प्रशासनिक संरचनाएं इस तरह हैं। केंद्रीय स्तर पर कल्याण मंत्रालय, एट आ यूनियन लेवल मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, पृष्ठ संख्या 119। गत वर्षों में समाज कल्याण एक स्वतंत्र विभाग के रूप में या किसी संयुक्त विभाग के रूप में या किसी संयुक्त विभाग के भाग के रूप में काम करता रहा है। कल्याण संस्था के सृजन की दृष्टि से किए गए आरंभिक प्रयासों में जून 1964 में समाज प्रतिरक्षा के विभाग की स्थापना हुई, ताकि शिक्षा, गृह कार्यों, स्वास्थ्य, श्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के समाज कल्याण से संबंधित विषयों की देखरेख की जा सके। जनवरी 1966 में समाज प्रतिरक्षा विभाग को समाज कल्याण विभाग का नाम दिया गया और अगस्त 1979 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इसका नाम शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय रखा गया। सन 1984 में इस मंत्रालय का नाम समाज और महिला कल्याण रखा गया। 25 सितंबर 1985 में कल्याण मंत्रालय द्वारा, जिसके साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों को जोड़ दिया गया। ये विषय गृह मंत्रालय तथा समाज और महिला कल्याण मंत्रालय से लिए गए थे। 6 जनवरी 1986 में कल्याण मंत्रालय के साथ वक्फ का कार्य भी जोड़ दिया गया। महिला और बाल विकास को मानव संसाधन विकास के 29 मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया। समय समय पर अनेक समितियों, अध्ययन दलों और अधिवेशनों के द्वारा केंद्र में एक अलग विभाग या मंत्रालय की आवश्यकता पर बल दिया गया। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज कार्य अधिवेशन ने 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को समाज कल्याण के केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना के लिए ज्ञापन दिया था। उसमें कारण ये थे कि लोगों में समाज कल्याण विषयक आवश्यकताओं का समाधान समेकित ढंग से होना चाहिए। उसमें एक प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण तथा दर्शन होना चाहिए। देश के सीमित संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करके मनुष्यों को प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें वैज्ञानिक सामग्री भी दी जाए। योजना आयोग ने भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस तरह के मंत्रालय की आवश्यकता पर जोर दिया था। प्लान प्रोजेक्ट योजना आयोग द्वारा समिति के द्वारा 1958 में समाज कल्याण और पिछड़ी जातियों के कल्याण पर अध्ययन दल, जो रेणुका राय समिति के रूप में था, उसने कहा था कि अनेक समाज कल्याण विषयों पर विविध मंत्रालयों ने विचार किया था। समाज कल्याण की योजनाओं और नीतियों को समय के दृष्टि और दिशा का लाभ नहीं था, अतः इसने समाज युवा कल्याण विभाग की स्थापना का अनुमोदन किया। इसने यह भी सुझाव दिया कि जो कार्य युवा कल्याण से संबंधित हैं, जो मनोरंजनात्मक सेवाएं हैं, जो विकलांगों की सेवा और उनका कल्याण है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो समाज कार्य शोध और प्रशिक्षण होता है वह सब, तथा वह कार्य जिसका संबंध भिक्षा और आवारागर्दी, युवा अपराध और सुरक्षा, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य से है, तथा गृह मंत्रालय के साथ संबंधित संस्थाओं के सुधार गृहों से मुक्त किए गए लोगों के पुनर्वास के जो कार्य हैं, उन सबको समाज कल्याण के नए विभाग से स्थानांतरित कर देना चाहिए। अध्ययन दल ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय समाज कल्याण नीति का प्रशासन प्रांतीय सरकारों के द्वारा समाज कल्याण योजनाओं को सुधारना, सामाजिक विषयों पर शोध को बढ़ावा देना, कल्याण प्रशासकों के एक केंद्रीय का गठन करना प्रशासन आदि है। पृष्ठ संख्या 120, भारत सरकार की मशीनरी और उसके कार्य की प्रविधि का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल ने 1967 में अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि पुनर्वास द्वारा कल्याण एक ही विभाग के अंतर्गत रखा जाए और इस विभाग को पुनः श्रम और रोजगार विभाग के साथ जोड़ दिया जाए, कि रोजगार, श्रम और समाज कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाए। इसने यह भी अनुमोदन किया था कि दानशील तथा धार्मिक संस्थाओं को विधि मंत्रालय से निकालकर सूचित नए विभाग में स्थानांतरित किया जाए, जिससे इस क्षेत्र में जनभावना को विकसित करने में तथा समाज के सरकार के कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक प्रभाव डाला जा सके। इस दल का यह भी विचार था कि समाज कल्याण को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण नियोजन से संबंधित होने के कारण समाज कल्याण विभाग से निकालकर स्वास्थ्य परियोजन और क्षेत्रीय नियोजन के सुझाए गए मंत्रालय में जोड़ा जाए। विषयों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। समाज कल्याण के पूर्ववर्ती विभाग या मंत्रालय ने किसी विचारशीलता या तर्क के आधार पर विषयों का बंटवारा नहीं किया था, ना ही किसी निश्चित पद्धति को अपनाया गया था। इसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों का पर्यालोचन करें तो स्पष्ट होगा कि उनमें कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं जिन्हें शामिल कर लेना चाहिए, तथा क्योंकि वे समाज कल्याण के क्षेत्र में रह गहरी समानता या निकटता रखते हैं। अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रशासित अनेक विषय समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा आसानी से प्रशासित हो सकते थे, जैसे समाज शिक्षा मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा और युवा कल्याण कार्य, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, श्रम कल्याण, श्रम मंत्रालय, निर्धन वर्ग को कानूनी सहायता, वैधानिक कार्यों का विभाग, विधि न्याय और कंपनी अफेयर्स मंत्रालय, विस्थापित मनुष्यों के लिए राहत और पुनर्वास, पुनर्वास विभाग, सप्लाई और पुनर्वास मंत्रालय। समाज कल्याण मंत्रालय को दिए गए विषयों में नीति निर्धारकों और प्रशासकों के दृष्टिकोण के आधार पर यह निर्धारित करना सुगम हो जाता है कि कौन सा मंत्रालय किस विशेष कार्य को करने के लिए अधिक अच्छी स्थिति में होगा। नए कल्याण मंत्रालय को दिए गए विषयों की सूची काफ़ी लंबी है। इसमें 32 विषय हैं जो समाज कल्याण के प्रत्येक संभावित पक्ष को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यह विषय सूची इस प्रकार है। रोमन का नंबर 1, इंडो यूएस, इंडो यूके, इंडो स्विस और इंडो स्वीडिश समझौते लागू करना। इन समझौते के अनुसार अनुदान, राहत, सप्लाई की ड्यूटी, फ्री रसीदें और इसके अंतर्गत आने वाली सप्लाई के वितरण से संबंधित विषय आते हैं। इस सूची में आने वाले विषय भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। रोमन का नंबर 2, समाज प्रतिरक्षा और समाज बीमा, किसी दूसरा विभाग को जो आवंटित ना हो, भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल की सूची 3 में आए विषय हैं। रोमन का नंबर 3, विकलांगों और बेरोजगारों को राहत और समाज प्रतिरक्षा तथा समाज बीमा से संबंधित तरीके जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हों, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर वे विषय जो भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल की सूची 2 या 3 में पढ़ते हैं और जो इन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध है। पृष्ठ संख्या 121। रोमन का नंबर 4, समाज कल्याण नियोजन, परियोजना निर्माण, शोध, मूल्यांकन, आंकड़े और प्रतिरक्षण। रोमन का नंबर 5, समाज प्रतिरक्षा से संबंधित विषयों में दूसरे देशों के साथ परंपरा और अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों के सुधार से जुड़े विषयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ से संकेत। रोमन का नंबर 6, जरूरतमंद बच्चों, जिन्हें यतीम और यतीम खाने भी शामिल हैं, की देखरेख और विकास के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत सेवाएं। रोमन का नंबर 8, शारीरिक और मानसिक रूप से अपांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण। रोमन का नंबर 8, शारीरिक रूप से विकलांगों और मनोरोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्था। रोमन का नंबर 9, अंधों के लिए राष्ट्रीय केंद्र, जिनमें देहरादून की केंद्रीय ब्रेल प्रेस शामिल है, हैदराबाद में प्रौढ़ बहरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और आंशिक रूप से बहरे बच्चों के लिए स्कूल, नई दिल्ली में मनोरोगी बच्चों के लिए मॉडल स्कूल तथा दूसरी राष्ट्रीय संस्थाएं। रोमन का नंबर 10, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। रोमन का नंबर 11, भिक्षावृत्ति, युवा आवारागर्दी और अपराध तथा दूसरे देखरेख के कार्यक्रम। रोमन का नंबर 12, युवा अपराधियों को प्रोबेशन। रोमन का नंबर 13, शोध, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, ज्ञान का आदान प्रदान तथा सुधारात्मक सेवाएं सहित सभी समाज प्रतिरक्षा विषयों पर तकनीकी निर्देशन। रोमन का नंबर 14, नशाबंदी से संबंधित सभी विषय। रोमन का नंबर 15, नशाखोरी के शैक्षणिक और समाज कल्याण पक्ष। रोमन का नंबर 15, मंत्रालय को सौंपे गए विषयों से संबंधित दानपरक और धार्मिक एंडोमेंट्स। रोमन का नंबर 17, मंत्रालय को सौंपे गए विषयों पर स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ाना तथा विकसित करना। रोमन का नंबर 18, समाज प्रतिरक्षा की राष्ट्रीय संस्था। रोमन का नंबर 19, कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रोमन का नंबर 20, इस सूची में दिए गए विषयों में से किसी एक के साथ संबद्ध दूसरी संस्थाएं या उपकार्यालय। रोमन का नंबर 21, निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन का अपराधियों को प्रोबेशन अधिनियम 1958 और ख शिशु अधिनियम 1961। रोमन का नंबर 22, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित कबीले, अनुसूचित नोमैडिक और अर्ध नोमैडिक कबीले और पिछड़ी जातियों तथा इससे संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियां। रोमन का नंबर 23, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों इत्यादि के लिए विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति, त्यागपत्र आदि तथा विशिष्ट अधिकारी के प्रतिवेदन। पृष्ठ संख्या 122। रोमन का 24, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों का विकास। रोमन का नंबर 25, पिछड़ी श्रेणियों की स्थितियों का छानबीन करने वाली समिति के प्रतिवेदन। रोमन का नंबर 26, का अनुसूचित क्षेत्र खा, असम के वे स्वशासित जिलों से संबंधित विषय जिनमें सड़कों और पुलों तथा फेरिश का निर्माण शामिल नहीं है। गा संविधान का 6वें शेड्यूल के पैरा 20 के साथ जुड़े टेबल के प्रथम भाग में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रांतीय राज्यपालों द्वारा बनाए गए अधिनियम। रोमन का नंबर 27 का अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित कबीलों के कल्याण पर कमीशन का प्रतिवेदन और ख किसी प्रदेश में अनुसूचित कबीलों के कल्याण के लिए अपेक्षित योजनाओं को बनाने और उन पर काम करने के लिए विषय में निर्देश जारी करने। रोमन का नंबर 28 का भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति, त्याग पत्र आदि। ख विशिष्ट अधिकारी का प्रतिवेदन और ग भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी विषय। रोमन का नंबर 29 अल्पसंख्यकों की समिति से संबंधित सभी विषय। रोमन का नंबर 30 वक्फ एक्ट 1954। 1954 का 29। रोमन का नंबर 31 संपत्ति एक्ट 1950 के प्रशासन के अंतर्गत वक्फ संपत्ति के विषय में कार्य। रोमन का नंबर 32 ख्वाजा साहेब एक्ट 1955 का 36 का प्रशासन। कल्याण मंत्रालय एरो संगठनात्मक विभाग एरो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एरो उपमंत्री एरो सचिव एरो अतिरिक्त सचिव वक्फ एरो संयुक्त सचिव एरो प्रशासन। संयुक्त सचिव एरो अनुसूचित जातियों का विकास एरो अल्पसंख्यक। संयुक्त सचिव एरो कबीलों का विकास। संयुक्त सचिव एरो समाज प्रतिरक्षा और बाल कल्याण। संयुक्त सचिव एरो विकलांग कार्यक्रम। पृष्ठ संख्या 123 कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कल्याण कार्यक्रमों की सूची प्रभावशाली होने पर भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ कल्याण कार्यक्रम मंत्रालयों के विभाग में उत्तरदायित्व में आते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य देखरेख और परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं। युवा कल्याण कार्यक्रम तथा जो महिलाओं और शिशुओं के कार्यक्रम हैं, वे 1985 से 1990 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्यों और खेलों के विभाग तथा महिला और शिशु विकास विभाग के द्वारा प्रबंध किए जाते थे। कल्याण कार्यक्रमों के कार्य देखना श्रम मंत्रालय का दायित्व है। भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण देखना प्रतिरक्षा मंत्रालय का दायित्व है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कल्याण कार्य जो व्यक्तियों या समूहों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, केवल कल्याण मंत्रालय से ही जोड़ा जाए। इस तरह के कल्याण कार्यक्रम को अनेक मंत्रालयों को उनकी सक्षमता के अनुसार जोड़ा जाएगा। प्रशासनिक संगठन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कल्याण मंत्रालय में एक मंत्री, एक स्टेट मंत्री और एक उपमंत्री रहता है। विभाग दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक में कल्याण सचिव मुख्य रहता है और दूसरे में महिला और शिशु कल्याण सचिव। कल्याण सचिव के साथ एक सहायक सचिव होता है। कल्याण के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए कल्याण विभाग 7 खंडों में विभक्त है। उनमें 5 खंडों के अध्यक्ष सह सचिव हैं और दूसरे जो वित्तीय सलाहकार और एक निर्देशन की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इन खंडों का व्यापक विभाजन इस तरह: वित्तीय खंड, विकलांग कल्याण खंड, अल्पसंख्यक खंड, अनुसूचित जाति विकास खंड, समाज प्रतिरक्षा और शिशु कल्याण खंड, कबीला विकास खंड और वक्फ खंड हैं। महिला और शिशु कल्याण विभाग के सचिव के साथ 2 सहायक सचिव रहते हैं। प्रत्येक खंड में निदेशक, उप सचिव, अधिसचिव, संयुक्त निदेशक तथा अन्य अधिकारी रहते हैं। ताकि मंत्रालय के विशिष्ट खंडों में से संबंधित कार्यों को संभाल सके। मंत्रालय में लोकसभा सदस्यों की एक परामर्शक समिति होती है जो मंत्रालय से संबंधित विषयों का पुनरीक्षण करते हैं। वे मंत्रालय को सामान्य कल्याण तथा वर्गगत दलों से संबंधित विषयों पर परामर्श देते हैं। मंत्रालय को अपने कार्यों में कई अधीनस्थ संगठनों, राष्ट्रीय समितियों और राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता मिलती है जिन पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ये राष्ट्रीय संस्थाएं हैं केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समिति, अल्पसंख्यक आयोग, समाज प्रतिरक्षा की राष्ट्रीय संस्था, जन सहयोग और शिशु विकास राष्ट्रीय संस्थान, नेत्र रोग पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, पुनर्वास प्रशिक्षण और शोध का राष्ट्रीय संस्थान, बहिरों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, मनोरोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कमिश्नर, भाषाई अल्पसंख्यक कमिश्नर, कृत्रिम अंग निर्माण निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए वित्तीय निगम और जनजाति सहयोग मार्केटिंग विकास संघ ऑफ इंडिया लिमिटेड। पृष्ठ संख्या 124। मंत्रालय के कार्यकलाप, एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्ट्री। इस कल्याण कार्यक्रम को बहुत से विषय दिए गए हैं और तदनुसार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण से जुड़े इसके कार्य भी विविधमुखी हैं। वे कार्य इस तरह से हैं। रोमन का नंबर एक, समाज के अनेक वर्गों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मंत्रालय ने अनेक वर्षों में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया है तथा इसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, स्त्रियों और बच्चों, युवकों, वृद्धों, नशाखोरों के कल्याण कार्यक्रम को हाथ में लिया है। और भी विषयों जैसे समाज प्रतिरक्षा, समाज सुरक्षा और समाज कल्याण को अपनाया है। रोमन का नंबर दो, कार्यक्रमों की नीति, योजना और क्रियान्वयन, पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स। विकासात्मक कार्यों की उपेक्षा करने वाले अनेक वर्गों के विकास कार्यक्रम की नीति, योजना और उनका क्रियान्वयन करना, ये सब कार्य इस कल्याण मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। रोमन का नंबर तीन, केंद्रीय और केंद्र द्वारा अपनाई योजनाओं का संचालन, ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। मंत्रालय केंद्रीय तथा केंद्र द्वारा अपनाए कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करता है। केंद्रीय योजनाओं में वे शामिल हैं, महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा शिविर, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक कार्यक्रम, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृह, अंधों, बहरों, मनोरोगियों और शरीर से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, अपांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को छात्रवृत्तियां, शोध प्रशिक्षण अनुदान राशि, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, समाज प्रतिरक्षा राष्ट्रीय संस्थान, जन सहयोग और शिशु विकास का राष्ट्रीय संस्थान, समाज शिक्षा कार्य तथा प्रशिक्षण, योजना शोध पुनरीक्षण शोध कार्यक्रम, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को दी गई अनुदान राशि और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों को मजबूर करना, अखिल भारतीय स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान राशि, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृह, देखरेख केंद्र और नशाबंदी के लिए शिक्षा और नशाखोरी की रोकथाम। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में देखरेख और सुरक्षा की अपेक्षा रखने वाले बच्चों के लिए सेवाएं, समेकित शिशु विकास सेवाएं, निराश्रित महिलाओं और शिशुओं का कल्याण, शारीरिक विकलांगों की समेकित शिक्षा, विकलांगों की विशेष रोजगार दफ्तरों के माध्यम से नियुक्तियां, रोजगार के सामान्य कार्यालयों में विशेष अधिकारियों की नियुक्तियां। छठी योजना में 1980 से 85 केंद्रीय तथा केंद्र द्वारा अनुमोदित योजना के लिए 150 करोड़ की धनराशि रखी गई, जबकि केंद्र अथवा प्रदेश के लिए यह राशि 122 करोड़ थी। मंत्रालय का कुल योजना बजट छठी योजना में 1,396 करोड़ रुपए की अपेक्षा सातवीं योजना 1985 से 90 में 2,029 से 2,057 करोड़ रुपए हो गया था। पृष्ठ संख्या 125, प्रदेश को मार्गदर्शन तथा निर्देश, गाइडेंस एंड डायरेक्शंस टू द स्टेट। समाज कल्याण के राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे निर्धनता कम करना, असमानता कम करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना की पूर्ति के लिए कल्याण मंत्रालय प्रदेशों की नीति, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। रोमन का नंबर 5, योजना आयोग के साथ मेल, एसोसिएशन विद प्लानिंग कमीशन। मंत्रालय योजना आयोग से मिलकर अपनी योजनाओं और राशि के आवंटन के विषय में बातचीत करता है, ताकि योजनाओं के लिए और प्रदेशों के लिए धनराशि तय की जा सके। यह धनराशि पंचवर्षीय और वार्षिक योजना के लिए तय की जाती है, साथ ही अवसर पाकर प्रांतों में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का पुनरीक्षण भी किया जाता है। रोमन का नंबर 6, प्रदेश मंत्रियों अथवा समाज कल्याण सचिवों के अधिवेशन बुलाना, कन्वेनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स आर सेक्रेटरीज ऑफ सोशल वेलफेयर। मंत्रालय प्रदेश कल्याण मंत्रियों तथा समाज कल्याण सचिवों के वार्षिक अधिवेशन बुलाता है, ताकि देश के विभिन्न भागों में चल रहे कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके, उनकी जरूरतों और समस्याओं से परिचित हो सकें, ताकि उनमें परिवर्तन तथा सुधार लाया जा सके, जिससे सारे देश के लोगों का संतुलित विकास और कल्याण हो सके। रोमन का नंबर 7, आयोगों, समितियों, अध्ययन दलों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशंस, कमेटीज, स्टडी टर्म्स। मंत्रालय समय समय पर समितियों, अध्ययन दलों, कार्यकारी वर्गों इत्यादि, जिनमें शैक्षणिक तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं, गठन करते हैं, ताकि वे सामयिक नीतियों और कार्यक्रमों का पुनरीक्षण कर सकें, उभरती हुई प्रवृत्तियां का अध्ययन कर सकें और अनुमोदन कर सकें, नीतियों का विचारपूर्ण निर्माण हो सके और कार्यक्रमों का प्रभावशाली क्रियान्वयन हो सके। विगत वर्षों में इसमें से कुछ समितियां और कार्यशील वर्ग पंचवर्षीय योजना में इस तरह से थे, समाज कल्याण के कार्यशील वर्ग, शिशु श्रम के रोजगार पर कार्यशील वर्ग, भारत में महिलाओं के स्थान पर समिति, महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग, स्वरोजगारी महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग, गैर औपचारिक सेक्टर में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग, नशाबंदी और नशाखोरी पर केंद्रीय समिति, अंतर मंत्रालयीय समिति, जिनमें बड़े बूढ़ों के कल्याण के लिए अनेक पग उठाने की सिफारिश की और वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। इस मंत्रालय ने कुछ और समितियों का गठन किया है, जैसे राष्ट्रीय शिशु मंडल, महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति, समाज कल्याण का परामर्शक समिति, पोषक आहार कार्यक्रमों पर केंद्रीय क्रियान्वयन समिति तथा यूनिसेफ सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के लिए क्रियान्वयन समिति। रोमन का नंबर 8, स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता, असिस्टेंस ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। भारत में कल्याण सेवाओं के विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण कल्याण मंत्रालय उन स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता देता है जो कम लाभ पाने वाले वर्गों को सहायता देने लगी हैं। 1987 से 88 में स्वैच्छिक मंत्रालयों को प्रदान की गई कुल आर्थिक सहायता 1,086 करोड़ रुपए थी। मंत्रालय यह राशि देकर स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ाया, जो संगठन मुख्यतः समाज कल्याण कार्यों में लगे हुए थे और जिनके विविध कार्यों में समन्वय लाने के लिए एक केंद्रीय कार्यालय को खोलने की जरूरत है। पृष्ठ संख्या 126, रोमन का नंबर 9, सूचना और सर्वजन शिक्षा कार्य, इन्फॉर्मेशन ऑफ मास एजुकेशन एक्टिविटीज। मंत्रालय ने यह एक सूचना और सर्वजन शिक्षा सेल की स्थापना की है ताकि इसकी अनेक समाज कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागृति पैदा की जा सके, जन जागरण पैदा किया जा सके और सामाजिक कुरीतियों जैसे शराब, नशाखोरी, भीख इत्यादि के प्रति स्वैच्छिक कार्य को उत्साहित किया जाए। विकलांगों, बूढ़ों और कुंठ रोगियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ाया जाए और समाज में उन उचित भूमिका के पहचाना जाए। इस सेल ने रेडियो कार्यक्रम करवाए हैं और मंत्रालय के कार्यक्रमों के प्रचार के लिए कई छोटी छोटी फिल्में निर्मित की हैं। एक फिल्म जिसका शीर्षक इनर इंस्टिक्ट्स था, वह बाल अपराधों पर बनी थी और मंत्रालय को 34वें राष्ट्रीय फिल्मोत्सव पर उसका इनाम मिला था। वह पुरस्कार रजत कमल पुरस्कार था क्योंकि समाज चेतना का सर्वोत्तम कृष्ट फिल्म थी। रोमन का नंबर 10, प्रकाशन पब्लिकेशन। मंत्रालय ने समाज कल्याण आंकड़ों पर 1974 में एक हैंडबुक छपवानी आरंभ की, जो समाज कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों के आंकड़ों को प्रदान करती है। प्रकाशन का 1986 का संस्करण इस श्रृंखला में चौथा प्रकाशन है, जिसका शीर्षक है कंप्लीमेशन ऑफ कंपेंडियम ऑफ वेलफेयर स्टैटिक्स। यह एक संक्षिप्त रूप में मंत्रालय के कार्यक्रमों और उपलब्धियों का समेकित चित्र प्रदान करता है। मंत्रालय का और एक शानदार प्रकाशन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, जिसका द्वितीय संस्करण 1987 में 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। यह व्यापक रूप से विविध विषयों का स्पर्श करता है, जैसे नीति और विकास, समाज सेवाएं, सामान्य समाज कल्याण, शिशु कल्याण, महिला कल्याण, वृद्धों और विकलांगों का कल्याण, पिछड़ी जातियों का कल्याण, स्वैच्छिक प्रयास, शोध और मूल्यांकन, योजनाएं और नीतियां, समाज कार्य शिक्षा और प्रशिक्षण, समाज प्रतिरक्षा, समाज कार्य पद्धतियां, समाज कल्याण प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण इत्यादि। यह पुस्तक इस एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में समाज कल्याण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यवान है। रोमन का नंबर 11, शोध मूल्यांकन और प्रमाणीकरण, रिसर्च इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। मंत्रालय अपने क्षेत्रों में शोध और मूल्यांकन अध्ययन को हाथों में लेता है। इससे सामाजिक समस्याओं को जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है, जिससे प्रभावी योजना, नीति निर्धारण और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों को लागू करने में सुविधा रहती है। इस तरह इकट्ठी की गई सूचना व्यापक प्रयोग के लिए दस्तावेजी हो जाती है। पृष्ठ संख्या 127, केंद्र के द्वारा अनुमोदित शोध और प्रशिक्षण की योजना द्वारा मंत्रालय विश्वविद्यालयों, संगठनों और समाज विज्ञान शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है ताकि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्योन्मुखी शोध और मूल्यांकन अध्ययन किए जा सकें। प्राप्त सुझावों को मंत्रालयों द्वारा गठित शोध परामर्श समिति के द्वारा जांचा और पारित किया जाता है। इसी तरह जनजाति शोध संस्थाएं भरपूर मात्रा में विकास प्रयासों में शोध मूल्यांकन, आंकड़ा संग्रह, प्रशिक्षण आदि के द्वारा सहायता देती हैं। ये संस्थाएं जनजातियों के लिए उपयोजना दस्तावेज तैयार करके उनके काम धंधों में उन्हें सहायता देती हैं। एक केंद्रीय जनजाति शोध परामर्शन समिति इन संस्थाओं का पथ प्रदर्शन करती है तथा इनके क्रियाकलापों का समन्वय करती हैं। मंत्रालय समाज कल्याण, समाज नीति और समाज नीति के क्षेत्रों में शोध और मूल्यांकन अध्ययन को प्रचोदित करता है ताकि योजना और नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सुविधा हो सके। और साथ ही मंत्रालय शीर्ष सार्वजनिक हस्तक्षेप वाली योजना नीतियों और सामाजिक समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए अप्लाइड नेचर वाले शोध प्रोजेक्टों को वरीयता देता है। रोमन का नंबर 12, द्विपक्षीय समझौतों का संचालन, ऑपरेशन ऑफ बिलेटरल एग्रीमेंट्स। मंत्रालय राहत सहायता के लिए भारत सरकार के साथ जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका की सरकारों के साथ उपहार या अनुग्रह सामग्री पर द्विपक्षीय समझौतों का संचालन करता है ताकि निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों के अनुग्रह सामग्री की ड्यूटी फ्री प्राप्ति हो सके। वे चीज़ें हैं अन्न, दूध का पाउडर, मक्खन से बने खाद्य, बहुविध खाद्य औषधियाँ, दवाइयाँ, अनेक विटामिनों वाली गोलियाँ, अस्पतालों की सामग्री जैसे एम्बुलेंस, चलती फिरती डिस्पेंसरियाँ, कृषि सामग्री इत्यादि। मंत्रालय इन वस्तुओं के उचित स्थानों तक पहुँचाने के लिए देश के भीतर परिवहन और हैंडलिंग क्लियरेंस का खर्चा भी बर्दाश्त करता है। रोमन का नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेना, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। मंत्रालय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनेक प्रतिनिधि भेजता है, जैसा कि इसने वियना में नशाखोरी और नशीली दवाइयों के विषय में हुए अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में मनीला में नशाखोरी की रोकथाम के लिए सामुदायिक संसाधनों के उपयोग पर यूएन कार्यशाला में वाशिंगटन यूएसए में विकलांगता तथा पुनर्वास शोध के राष्ट्रीय संस्थान में जो यूएसएआईडी डीएमटी परियोजना के अंतर्गत तथा जापान में हुए 5वें समाज कल्याण एक्सपर्ट्स अध्ययन कार्यक्रमों में प्रतिनिधि भेजकर 1987-88 इत्यादि में किया था। पृष्ठ संख्या 128। कल्याण मंत्रालय की ऊपर बताई गई गतिविधियां समाज कल्याण के विविध क्षेत्रों में इसकी व्यस्त सहभागिता का पूर्णतया प्रतिनिधित्व नहीं करती। पिछले वर्षों में ये क्रियाएं बढ़ी हैं क्योंकि मंत्रालय का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का क्षेत्र भी बढ़ा है। भविष्य में मंत्रालय की गतिविधियों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, निर्धनता घट नहीं रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, समाज की दुर्बल श्रेणियों का अत्याचार बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ा है जिससे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाने की स्थितियां देश में बढ़ी हैं इत्यादि।